योग में जो मेहनत का अनुभव होता है उसको मोहब्बत में कैसे बदलें, इस पर आप हमें मार्गदर्शन देंगे। आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी से मिलते हैं।
ओम शांति। इस बेहद के हॉल में बैठो तो सबसे पहले खुशी की बात कौन सी याद आएंगी? हाँ, सामने से देखो तो बेहद का बाप और बेहद बाप का, बेहद के बाप का, ये बेहद का परिवार, इतना बड़ा बेहद का परिवार किसको होता है? चाहे कितने भी, कहाँ, कैसे भी मौके पर कितने भी लोग इकट्ठे हो जाए, फिर भी ऐसा स्नेही परिवार सदा बाप की याद में रहने वाला परिवार, और उसके साथ बड़े ते बड़ी बात कि बेहद का बाप जिसको सारी दुनिया याद करे, ऐसे बाप के हम बच्चे, और ये हमारा बेहद का परिवार देख देख दिल खुश हो जाता है। और आप सोचो, जब दिल के अंदर खुशी है, और खुशी इस बात की है, कौन सी बात? आज की मुरली याद है, क्या क्या यादें होनी चाहिए? बाबा ने याद के लिए क्या क्या बातें फिर से याद कराई है। अगर वे बातें सदा हमारे बुद्धि में चलती रहे तो बाप को याद करना मुश्किल नहीं। आज का विषय मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करना। आज भाइयों ने बहुत अधिक तरफ ले लिया है, इधर भी जगह पड़ी है। अच्छा, आज का विषय है मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करना। आप सभी यहाँ बैठे हुए मोहब्बत में मग्न है या मेहनत करने वाले? क्या कहेंगे? सबका एक जगह पर आकर के इकट्ठा होना, बाप के पास पहुंच जाना, ये मोहब्बत का सबूत या मेहनत का? और जब आप सब यहाँ बैठे हैं तो अभी बाप को याद करने की कोई मेहनत करनी पड़ती है? अधिकतर हर एक अपने अनुभव में यही बताता है कि जब मधुबन में आते हैं याद बड़ी सहज हो जाती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कभी इस बात पर ध्यान दिया होगा, अगर देते रहेंगे तो मधुबन में याद सहज क्यों होती है? क्योंकि सबका बुद्धि योग एक ही तरफ है, अर्थात स्वयं का, हर एक का स्वयं का बुद्धि योग एक बाप के तरफ ही है, आते ही है बाप से मिलने। भले स्थानीय बाप का है, बाप ने यह स्थान बनाया ही है बच्चों को सर्व पुरानी दुनिया से, सर्व बातों से बुद्धि योग हटा करके और अपने साथ नई दुनिया में ले जाना। भले बाप हमें नई दुनिया में भेजता है, परंतु पुरानी दुनिया से तो हमको साथ ले जाता है ना। और जबकि हमें सदा ये याद रहे कि हम बाबा के साथ वापस अपने घर जा रहे हैं, अथवा बाबा हमें नई दुनिया स्वर्ग में ले जाएगा, स्वर्ग याद आने से नरक की सब बातें भूल जाती हैं। हमें तो याद है जब हम शुरू शुरू में यज्ञ में आए, यह बात भी अभी कहने में आती है, लेकिन उस समय तो हमारे जीवन में ये सब नेचुरल बातें रही। जैसे सुना छोटेपन में आए, भले हम लोग छोटेपन में आए, कोई तो माताएं भी आई ना, ऐसे तो नहीं खाली हम छोटे ही आए, माताएं भी थी, कुछ भाई भी थे, बल समर्पित जीवन में भाई अधिक नहीं चले, केवल माताएं और हम बहनें छोटे ही थे, परंतु जो भी उस समय आए, जब बाबा को देखा, देखने से ही नेचुरल निश्चय ऐसा हो गया, जो भी आए, मुझे तो यहाँ तक याद है उस समय किसको भी ये मेहनत नहीं करनी पड़ी कि भगवान है या नहीं है। निश्चय करने के लिए भी शुरू शुरू में किसको भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। और यही मुख्य बात, जब बाबा के सामने आए, भले किन्हों को साक्षात्कार भी हुआ और सबको साक्षात्कार नहीं हुआ, परंतु बाबा को देखने से, जैसे आज की मुरली थी ना, नजर से निहाल, आज की है ना मुरली, सुनी है आज की मुरली जिन्होंने, हाथ उठाओ, मेजॉरिटी है, तो नजर से निहाल, बस बाबा की दृष्टि पड़ी और अपनी शुद्ध बुद्ध भूली, केवल अपनी ही नहीं परंतु सारी पुरानी दुनिया की शुद्ध बुद्ध भूली। अभी ये कहने में आता है कि उस समय निश्चय किया, परंतु उस समय एक ऐसा भाव बन गया जैसे कि हम बाबा के ही, अथवा बाबा ही हमारा बाप है, और हम फिर से आके अपने बाप के पास पहुंच गए। इसी कारण एक धक से पुरानी दुनिया के सर्व नाते टूट गए। बल अभी के समय और उस समय में अंतर है। अभी आप सब पुरानी दुनिया में रह रहे हैं, पुरानी दुनिया में के संपर्क में जीवन को बिता रहे हैं, परंतु ये तो अपने अंदर दिल की बात है। जब अपने अंदर दिल में किसी की लगन लग जाती है, तो लगन में सदा मन के अंदर उनकी याद बनी रहती है, और उस याद में, उस लगन को तोड़ने के लिए अगर कोई कुछ भी करता है, तो लगन ऐसी चीज है जो कोई भी बात सामने आती रहेगी तो उसको पार करता ही जाएगा, उसको मेहनत नहीं मानी जाएगी, परंतु वह लगन जिसको मोहब्बत शब्द कहा जाए, जिस मोहब्बत में, उस लगन में जो भी परिस्थिति आएगी, परिस्थिति के पर ध्यान नहीं जाएगा, परंतु लगन के तरफ बुद्धि योग होने के कारण उसको कैसे पार करते जाएं, करते ही जाएंगे। जैसे अभी भी आपको चक्रधारी बहन ने समझाया ना कि जो लक्ष्य है, अगर लक्ष्य के तरफ हमारा पूरा ध्यान है, तो तो लक्ष्य के तरफ हम चलते रहेंगे, जो भी बीच में बातें आती जाएंगी उसको क्रॉस करते ही जाएंगे। जैसे कहाँ भी जाना होता है, विशेष रूप से पहाड़ी पर जाते हैं, तो कितनी सीन सीनरियाँ बीच में आती है, सीन सीनरियों को देखा भी जाता है, परंतु चलते जाएंगे, जहाँ पहुँचना होगा वहाँ जा कर के पहुँचेंगे। इस लगन में बाबा से हमारी प्रीत जुटी रहे और उस प्रीत से हम सर्व बातों को भुला दें। मुख्य बात है, प्रीत तो जुट गई, परंतु प्रीत के साथ साथ जो भी और बातें हैं उन सब को भूल जाना, यह भी हमारे बुद्धि में पक्का याद रहना चाहिए कि और सब तरफ के से हमें अपना बुद्धि योग हटा देना है। भल ये तो समझते हैं शरीर है, उसके लिए हमें कर्म करना है, परंतु शरीर निर्वाह के लिए कर्म इंद्रियों से कर्म करते रहें। बाबा भी हमें समझाते हैं, उसको आप सेवा समझ के कर्म करो, लेकिन बुद्धि का योग, जब हमारे अंदर बाप के प्रति बाप की महानता हमारे अंदर स्पष्ट है, और उस महानता के साथ साथ जो हमें बाप से प्राप्ति है, आज संसार में भी कोई हमें आपातकाल के समय, ज़रूरत के समय कोई थोड़ी भी मदद करता है तो उसकी भी याद बनी रहती है। और ये तो दुखमय दुनिया, कलयुगी दुनिया, ऐसी दुनिया में बाबा हमें सदा सुखों की दुनिया में ले जाता है। भल वो भविष्य की बात है, लेकिन यहाँ जब हमें बाबा बताते हैं स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग ऐसा है, और हम लोगों का भी सुना हुआ तो है ही ना, चलो भारत में रहने वाले भारतवासी भक्ति मार्ग के अनुसार भी अपने पूज्य देवताओं को मानते हैं, उनकी जीवन कहानियाँ जो भी शास्त्रों में लिखी हुई हैं वो सुनते और उन भावनाओं में तो रहते ही है ना। जब वे बातें भी हमारी सुनी हुई है और मानी हुई है कि वे ऊंच है, और फिर जब बाबा हमें बताते हैं कि अब मैं तुम्हें नई दुनिया में स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूँ, स्वर्ग क्या है, कैसा है, वहाँ हमारी जीवन कैसी बनेगी, अगर उन बातों को हम अपने मन के अंदर याद करते रहें। आज भी बाबा ने कहा कि हमारे अंदर ये याद बनी रहे, हमें कौन मिला है, हमें पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाने वाला वो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, परंतु बाप कौन सा बाप है, साधारण लौकिक बाप तो नहीं ना, जो एक केवल मुझे या अपने दो चार बच्चों को जन्म दिया है, ये बेहद का बाप, विश्व का पिता, और विश्व का पिता भी वो जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी शक्ति महान है, गाई हुई है, जिसके लिए हम मानते हैं कि वो सर्व की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। अगर ये महानता हम अपने दिल के अंदर बार बार याद करते रहें, बाबा ने हमें कितनी यादों के तरीके बताए हैं, हम अपने बाबा ने हमें स्वमान की याद दिलाई है, बाबा ने हमें हमारे अनादि स्वरूप की याद दिलाई है, हमारे आदि स्वरूप की याद दिलाई है। जो जो यादें बाबा ने हमें दिलाई है, अगर उन बातों को हम याद करते रहें, हमें ध्यान इस बात पर देना है कि उठते बैठते चलते फिरते मन के अंदर हमारी क्या क्या ख्यालात चलती हैं। क्योंकि ये जो पुरानी बात है, पुरानी आदत, हम तो कहेंगे पुराने जमाने की, क्योंकि हमारे लिए अभी ये नया जमाना, अर्थात अब ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तो संगम युग दुनिया वालों के लिए नहीं है, दुनिया वाले तो अपने को कलयुग में मानते हैं, और हम अपने को संगम युग पर अनुभव करते हैं। तो संगम की महानता, संगम वो समय है जबकि सर्वशक्तिमान बाप आकर के इस सारी विश्व को परिवर्तन करते हैं, और उस सब विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए बाबा हम बच्चों को पहले तैयार करते हैं। पहले हमारे में वो परिवर्तन, जो हमारे में नवीनता आवे। नवीनता कौन सी? अर्थात जो पुरानी दुनिया की रस्में है, रीत है, बल्कि जो पुराने अनेक जन्मों के मेरे संस्कार हैं, उन सर्व बातों का परिवर्तन मुझे स्वयं में करना है। और इनके परिवर्तन की बड़ी सहज एक विधि है। जैसे माना जाता है, जब मनुष्य शरीर छोड़ता है और दूसरा नया जन्म लेता है, तो नया जन्म लेने के बाद उसको अपना पुराना जीवन याद रहता है, उसको पता है, भले संस्कार उस पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बना हुआ है, परंतु उसको ये तो स्मृति नहीं है ना कि मैंने पूर्व जन्म में क्या किया, है स्मृति, भूल जाता है। और जो जो बात सामने आती है, जो माँ बाप सिखाते जाते हैं वो सीखता जाता है, जो देखते जाते हैं वो करता जाता है। इसी प्रकार से जब हम बाबा के पास आते हैं और बाबा के लिए हमारे अंदर यह निश्चय है, हम ये पहचान है कि हमें तो वो ही भगवान अब मिला है, भगवान मेरा बाप है, अर्थात मैं भगवान का बच्चा हूँ। जब ये बात हमारे अंदर में निश्चय में आ जाती है, तो हमें साथ साथ अपने अंदर जब ये जागृति आती है, अब मेरा भगवान के पास नया जन्म है। जब हम अपने को नया जन्म में समझते हैं, तो नया जन्म माना पुराना खत्म। भले ये बड़ी एक महीन बात है, हमारे अंदर अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, परंतु उन संस्कारों को जैसे जैसे हमारे अंदर विचार आएंगे या जो कुछ देखेंगे, अगर पुरानी दृष्टि से देखते हैं तो फिर विचार भी उसी रीति से चलता है। अगर पुरानेपन को देखते हुए हम अपनी लगन में मग्न हैं, और हमें ये याद रहे कि अब हम भगवान के बच्चे हैं, जो बाबा ने हमें सिखाया है उसी के अनुकूल ही हमें अपने जीवन में कर्म करना है। ये हमारे अंदर दृढ़ता बन जाने के कारण, समझो मन में कोई विचार आएगा भी, परंतु सदा बाबा की बातें याद रहेंगी, तो उन विचारों को हम परख सकेंगे कि ये विचार श्रीमत के अनुकूल नहीं है, बाबा ने हमें ये नहीं कहा है। ये समझ आने से बाबा ने क्या कहा है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो हमें याद रहने से हम अपने को परिवर्तन सहज करते जाएंगे। और जितना जितना हम स्वयं में परिवर्तन करेंगे उतना ही फिर हमारे कर्मों में परिवर्तन आता है, तो हमारे संस्कार ऑटोमेटिकली परिवर्तित होते ही जाएंगे। और पुराने जो भी संस्कार बने हुए हैं वो अंदर ही अंदर परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें केवल एक ही बात कहता हूँ, कितनी सहज बात, सुनने में कितनी सहज लगती है, परंतु उस समय भगवानों वाच्य के समय, जैसे बाबा कहते हैं मैं तुम्हें कितनी सहज बात, सिर्फ एक बात कहता हूँ, और अगर उस समय सूक्ष्म में हमारे अंदर ये संकल्प उठता है, बाबा तो कहता है बड़ा सहज है, परंतु हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम तो दुनिया में रहते हैं। ये संकल्प क्या हुआ? अल्टरनेट। वो संकल्प ही हमारे ऊपर सवार हो जाता है और फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि भगवानों वाचा सुनते हुए सुनते सुनते हमने अपना संकल्प, और वो भी विपरीत संकल्प, इतना हमें अपने को रियलाइज करना चाहिए कि हमें जब हम भगवान के महावाक्य सुनते हैं उस समय हमारे अंदर किस भी प्रकार का कोई और संकल्प नहीं चलना चाहिए। जो जो बात हम सुनते जाएं उसको और अच्छी रीत से, उसको और हम स्वीकार करते हुए समझते जाएं, बाबा कहते हैं इतना सहज है तो उसको सहज बनाया जाए। उस समय हम ये संकल्प न करें हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, भले हमें पता है कि हमको मेहनत करनी पड़ती है, परंतु बाबा के महावाक्यों को जितना हम स्वीकार करते जाएंगे, स्वीकार करने से हमारी बुद्धि शुद्ध बनती जाएंगी। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, क्योंकि मन और बुद्धि उसका काम बड़ा सूक्ष्म है। देखो मन कितने में काम करता है, आंखें देखती है, जो कुछ देखते हैं मन अपना चिंतन शुरू कर देता है, भले आप उस पर उसको कहो या ना कहो, परंतु मन का काम शुरू हो जाता है। तो हमें बाबा आत्मा की नॉलेज इसलिए देते हैं कि मैं आत्मा हूँ अति सूक्ष्म, एक तरफ तो मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ, ये मन बुद्धि मेरी ही चेतन शक्ति है, जिस पर मेरा ही जो मैं हूँ जैसी हूँ, अर्थात अनादि रूप में मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, उस परमात्मा पिता के साथ रहने वाली हूँ, इस दुनिया से परे ते परे घर में परम धाम में रहने वाली हूँ। तो जो मेरे उस समय के संस्कार है, अर्थात जो मैं उस समय जैसा मेरा स्वरूप है, वो मैं अपना याद करते हुए उसी बात को अंदर में पक्का करूं, तो फिर जो भी हम सुनते जाएंगे अथवा कोई भी संकल्प उठेगा तो उसको हम उसी अनादि स्वरूप की शक्ति से सहज परिवर्तन कर सकेंगे। परंतु इस बात की हमें अंदर पूरी रियलाइजेशन चाहिए कि वास्तव में जो मेरा स्वरूप है वो ही अभी मुझे संगम पर इस जीवन में उन्हीं स्वरूप के अनुकूल ही अपने लक्षण बनाने हैं और उन्हीं लक्षणों से हमें ये कर्म करना है। तो ये बात अगर हमारे मन के अंदर याद रहे तो जो भी बाबा हमें समझाते जाएंगे उसको हम उसी प्रकार स्वीकार करेंगे कि बाप हमें वही बनाने चाहते हैं जो मेरा वास्तविक स्वरूप है। आत्मा के नाते से मैं उस स्वरूप में शुद्ध हूँ, और जब हम पहले सृष्टि मंच पर आती है आत्माएं, तब भी हम सतो प्रधान स्वरूप में हैं, तब हमें सतो प्रधान प्रकृति मिलती है, सतो प्रधान सृष्टि है, उस समय मेरा स्वरूप दैवी गुण संपन्न है। ये दोनों स्वरूप बाबा हमें इसलिए याद दिलाते हैं कि जो बात हम भूल गए हैं वो याद आने से हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आएंगी कि हमें वो ही बनना है। इसलिए हम सदा उन्हीं बातों को याद करते रहें जो बातें बाबा ने हमें याद दिलाई है, और इसलिए ही दिलाई है। आज भी बाबा ने कहा ना, अपने को हमेशा समझो, हम कल्प पहले भी अथवा कल्प कल्प के हम विजयी है तो फिर तुम माया पर विजय पा सकेंगे, बल्कि माया तुम्हारे सामने आएंगी नहीं, क्योंकि मन के अंदर सदा वो बात याद है। उसी के कारण मन सदा शुद्ध विचार करते रहते हैं। जितना जितना हम अपने अंदर हमारे अंदर जितना शुद्ध चिंतन चलता रहेगा, बाबा हमें रोज रोज क्यों आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। बल कोई समझते हैं ये तो वही बात है, चलो नॉलेज को हमने सुना है, हमें समझ में है, बुद्धि में समझ है, परंतु उस समझ को जब तक हमने पूर्ण रूप से अपने कर्मों में नहीं लाया है तब तक तो वो बात हमें याद रखनी ही पड़ेगी। और बाबा भी हमें इसलिए बार बार सुनाते हैं कि सुनते 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 वही हमारे विचार हो जाए, हमारे संकल्प श्रीमत के अनुकूल बन जाए, तब फिर हमारे कर्म भी श्रीमत के अनुकूल रहेंगे और हमारे संस्कार सहज परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए अगर हम सदा एक तरफ बाप की लगन में मग्न अर्थात बाप के प्रति अटूट प्रेम, बाप से हमारा ऐसा स्नेह हो जैसे लौकिक में किसके साथ स्नेह होता है, तो उसके लिए सर्व बातें जो उसको पसंद अपनी पसंदी भी वो बना लेते हैं, क्योंकि हमें उसके साथ चलना है। तो अगर ये बात भी हम याद रखें, बाप को जो पसंद है वो ही मुझे करना है, वो ही मुझे सोचना है, वो ही मुझे बोलना है, तब तो हम बाप के भी प्यारे बन जाएंगे। और जब हम बाप के प्यारे बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बाप की आशीर्वाद हमारे पे बनी रहती हैं। वैसे भी माना जाता है भगवान की आशीर्वाद तो मनुष्य को कितना ऊंचा बना देती हैं, और हमें बाबा के कितने वरदान मिलते रहते हैं, एक एक वरदान को अगर हम याद रखें और उस वरदान के अनुकूल हम अपने विचारों को चलाते रहे, विचार है सारा मदार हमारे संकल्प पर, जितना हमारे संकल्पों में शुद्धि आती जाएंगी उतना ही हमारे बोल हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते जाएंगे। इसलिए हमारा ध्यान ओम शांति।